14 पैसठ लाख रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे रूहानी बाप की याद में बैठे हो, जिस रूहानी बाप को इस विश्व भर में कोई भी नहीं जानते, बाप भी कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी इस विश्व में जान नहीं सकते। कब तक नहीं जान सकते? जब तक मैं खुद बैठ अपना परिचय न दूं। भारत में कहते भी हैं नीति नीति अर्थात हम नहीं जानते, ये किसने कहा? देही अभिमानियों ने कहा या देही अभिमानी ने कहा? देही अभिमानी कब ऐसे कहेंगे? नहीं कैसे? नीति नीति हम उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते, हमें उसका अंत का पता नहीं है। देवी अभिमानी एक बाप ही बनाते हैं, देव अभिमानी रावण बनाते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो बरोबर हम आत्मा है। आत्मा क्या है? दुनिया में तो आत्मा का कोई को ज्ञान है ही नहीं, सभी को देह का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान किसको भी नहीं। कहते भी हैं आत्मा को रियलाइज करना चाहिए कि आत्मा क्या है। अब ये बतावे कौन? क्या कोई बता सकता है तुम फलाना हो, तुम्हारा बाप ये है? फलाना हो मन फलाना मन तुम्हारा पार्ट ये है, तुम ये पार्टधारी हो, कोई बता सकता है क्या? आत्मा का रियलाइज कराना तो बाप का ही काम है। एक गीत भी है, कौन देश से आए बाबू कौन देश को जाना। ऐसे नहीं कहते हैं किस देश से आई हो आत्मा, वो तो देह अभिमानी में आकर के बाबू कह देते हैं। समझते भी दूर देश से ही आना होता है, बाप के लिए भी कहते हैं दूर देश से आए हैं देश पर आए। वैसे ही आत्मा भी दूर देश से आती है, देश अर्थात जहां बहुत आत्मा रहती है उनको कहा जाता है ब्रह्मांड। जहां अंडे मिसल आत्मा रहती है ये तो किसको भी पता ही नहीं है कि अंडे कितने बड़े होते हैं, आत्मा कितनी है। शास्त्र में तो लिख दिया आत्मा अंगुष्ठ मिसल है। तब फिर कहते हैं आत्मा सितारा है, ये तो बहुत छोटी गिनती है। बच्चे अभी समझते हैं आत्मा अति सूक्ष्म है, स्टार भले है बड़ा परंतु दूर से देखने में बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। कोई कोई बहुत छोटे स्टार होते हैं, कोई छोटा स्टार सोने का यहाँ तिलक मिसल लगाते भी हैं, वो स्टार तो इन आंखों से देखा जाता है क्योंकि स्थूल है। आत्मा को तो इन आंखों से देखा ही नहीं जा सकता, कौन सी आंख से देखेंगे? स्थूल आंख से स्थूल स्टार देखा जाएगा, सूक्ष्म आंख से तीसरे नेत्र से आत्मा तीसरा नेत्र देखा जा सकता है। आत्मा को जाना जा सकता है, देखा नहीं जाता है। तो आत्मा के बाप को भी जाना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। जानेंगे कि आत्माओं का बाप है। आत्मा ही एक शरीर को दूसरा लेती है, सुख दुख आत्मा ही भोगती है। आत्मा के लिए कहा जाता है ये पाप आत्मा है ये पुण्य आत्मा है, परंतु आत्मा क्या है ये कोई भी नहीं जानते। तुमको भी अभी बाप ने बताया है, और फिर परमात्मा भी क्या चीज है? अगर तुम समझते हो तो बताओ। अब तुम तो समझते हो, गीता में तो लिख दिया है वो अखंड ज्योति रूप है, हजारों सूर्यों से तेजोमय है। ऐसा ही सभी को सुनाया गया, कोई कहे हमको परमात्मा का साक्षात्कार हो, या कोई बैठे शिव के आगे बैठे नर्मदा भक्ति करते हैं तो जो सुना है वही साक्षात्कार होगा तेजोमय रूप का। अभी तुमको बात समझाते मैं ऐसा थोड़े ही हूँ, कैसा तेजोमय रूप वाला, कोई स्थूल तेज थोड़े ही होता है, ऐसे कोई थोड़े ही कोई रोशनी का पुंज है जैसा साक्षात्कार होता है। मेरे में तो ज्ञान की लाइट है, मैं तो तुम बच्चों को बैठ समझाता हूँ ना, इसमें तेज आदि की कोई बात नहीं, मैं तो बिल्कुल ही ठंडा हूँ। साक्षात्कार भी तुमको होगा तो बहुत छोटी बिंदी का होगा, जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है, साक्षात्कार से कोई समझ नहीं सकेंगे ये क्या है। परमात्मा का साक्षात्कार भी परमात्मा बिगड़ किसी को हो नहीं सकता है, क्या बात है। परमात्मा का साक्षात्कार परमात्मा के बिगड़ किसी को नहीं हो सकता है, परमात्मा को भी साक्षात्कार की जरूरत है। परमात्मा किसको कहा गया है, उसे परमात्मा कहा जाता है जिसने खुद अपने पार्ट को रियलाइजेशन कर लिया, वो तो सभी आत्माएं रियलाइज करेंगी, ऐसी कोई भी आत्मा नहीं जो बिना रियलाइज करे परमधाम वापस चली जाए। रियलाइज तो सबको करना है आगे या पीछे, बाकी परमात्मा पार्ट को रियलाइज करने की बात है। परमात्मा का साक्षात्कार भी परमात्मा बिगड़ किसी को हो नहीं सकता, मैं आकर के स्वयं ही अपना परिचय देता हूँ, और वो परिचय कौन प्राप्त कर सकता है, वो परिचय भी पहले पहले जो परम पार्टधारी है हीरो पार्टधारी वो ही पहले लेता है। इसलिए बोला परमात्मा का साक्षात्कार भी परमात्मा बिगड़ किसी को हो नहीं सकता, बाकी जो भी जिस भावना से जिसकी भक्ति करते हैं तो उनका साक्षात्कार होता है, बहुत नवदा भक्ति करते हैं तो साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ तो भक्ति आदि की कोई बात नहीं है, यहाँ तो पावन बनना है, साक्षात्कार की भी आस नहीं रखनी है, साक्षात्कार से क्या फायदा। ऐसे कृष्ण आदि का साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में बहुतों को होता है, ब्रह्मा का भी साक्षात्कार होता है, इस ब्रह्मा के पास जाने से इन द्वारा शिव बाबा की नारी मिलेगी, जिस नॉलेज द्वारा ही भविष्य प्रिंसेस बनना है। प्रिंसेस तो बहुत बनते हैं, महाराजा पक्ष को भी पहले छोटेपन में प्रिंस कहेंगे और राजा को भी प्रिंस कहेंगे, बल प्रिंस प्रिंसेस का साक्षात्कार होता है, परंतु वो कौन सा नंबर का हुआ, कौन से नंबर का प्रिंस प्रिंसेस है ये कोई थोड़ी समझ सकते हैं। तुम्हारी आत्मा पढ़ती है, आत्मा समझ सकती है हम क्या बनेंगे, तो सारा मदार है सर्विस पर, जितना जो सर्विस करेंगे बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ही फायदा होगा। तो बाबे समझाते हैं मीठे मीठे सिकिल गए, अर्थात 5-4 वर्ष के बाद आए मिले हुए बच्चों, पूछते भी आगे कभी मिले थे, हाँ बाबा 5-4 वर्ष पहले मिले थे, क्या पाने के लिए मिले थे, स्वर्ग की बात बताई, प्रजा भी तो बहुत बनेगी, विश्व का मालिक तो सभी अपन को कहेंगे, संपद वाले भी कहेंगे हम तो विश्व के मालिक हैं, जैसे भारतवासी सभी कहेंगे ना हम भारत के मालिक हैं, परंतु उनमें भी फिर नंबरवार मर्तबे तो होते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आकर के हमको राजयोग सिखलाते हैं, ये भी कोई नई बात नहीं है, कल्प कल्प बाप ने हमको सिखाया। अभी तुमको याद करना है शिव बाबा को, ये बाबा भी कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में बाप आकर के हमको राजयोग सिखलाकर राजाई देते हैं, तत्कम तुम भी कहते हो ब्रह्मा द्वारा हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, वो ज्ञान का सागर है, बाबा सत्य है चैतन्य है मनुष्य शक्ति का बीज रूप है, मनुष्य भले जाते हैं परंतु सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं सच्चिदानंद, बात को नहीं समझते। सत्य मानो है भी सत्य, रहेगा भी सत्य और था भी सत्य। तो सत्य माना अविनाशी हुआ, जिसका विनाश कभी नहीं होता। विनाश नहीं होता माना सदा टाइम रहता। तो शक्ति पर सदा टाइम कोई चीज है क्या? तो बाबा, तो बाबा तो 5000 वर्ष परम धाम में रहता है। वास्तव में शिव बाबा नहीं रहता परम धाम में, शिव बाप रहता है। वो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है सिर्फ, सुप्रीम सोल। बाबा नहीं, बाबा माना ग्रैंड फादर। बाबा का संबंध बनता ही तब है जब साकार शरीर में आता है। तो साकार रूप में जो शिव ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल के मानिंद पावर वाला बनता है, ऑलराउंड पार्ट बजाता है, उसके लिए कहा गया सत्य। और सत्ययुग में जाने वाला भी सतयुग की ही शक्ति स्थापन होती है और सत्य ही उसे पसंद है। और चैतन्य भी है, चैतन्य मन चैतन्य कहा जाता है, जिसमें प्रेम हलन चलन हो, बोलता चालता हो और आनंद स्वरूप। मनुष्य शक्ति का बीज है, मनुष्य शक्ति परमधाम में होगी या साकार शक्ति? इधर साकार शक्ति मनुष्य शक्ति की यही होती है, बीज है साकार तो शक्ति भी है साकार। मनुष्य है साकार तो मनुष्यों का बीज है साकार। उस साकार मनुष्य शक्ति का जो साकार बीज है उसमें ही सुप्रीम सोल आता है। मनुष्य भले जाते हैं परंतु सिर्फ कहने मात्र के, जैसे आप थोड़ी समझते हैं, जिन्हें सुनाई महिमा करते हैं। तुम्हारी तो बातें ही सारी प्रैक्टिकल हैं, बात तुमको पढ़ाई रही। तुम जानते हो जैसे हम आत्मा हैं, बाबा भी ऐसा ही है। हम रथ पर आकर के विराजमान होता हूँ, जैसे गुरु शिष्य के बाजू में बैठती है ना उनको सिखलाने के लिए, तो ये भी साथ में है। बाबा कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। प्रकृति माने पांच तत्वों का संघात, पांच तत्वों का संघात का शीर्ष नमूना मनुष्य का शरीर। तो प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं आता ही हूँ राज्य सिखलाने के लिए, इमरजेंसी भी है ना। तुम जानते हो पहले पहले जन्म कितना गिना जाए? शक्ति का आवर्तन होता है, नई शक्ति बनती है तो शुरुआत कहाँ से होती है? जो बाबा जी है सबसे पहले पहली जयंती, क्यों क्यों जयंती? जयंती पहले किसकी मनाई जाए? उनके लिए तो कहते हैं ऊंचे ऊंचे भगवान, हम भी उनके बच्चे हैं ना, उनको शिव बाबा परम पिता भी कहते हैं। अभी तुम समझते हो 5000 वर्ष पहले बाबा आया था, वैकुंठ का राजभाग सीढ़ी पर लेकर के आया था, हथेली बुद्ध रूपी हथेली पर स्वर्ग का राजभाग लेकर के आया था। तो कोई पहले स्कूल में लेकर के आया कि पहले बुद्ध रूपी क्षेत्र में पहले पहचान हुई? बाप कहते भी हम तुम्हारे लिए सीढ़ी पर बैठ लेकर के आता हूँ, कृष्ण का चित्र भी बनाया हुआ है सीढ़ी पर बैठ। कौन सा कृष्ण? कृष्ण में बच्चे के रूप में पैदा होने वाला, जरूर संगमी भी कृष्ण है। उसी की बुद्धि में पहले ये बात बैठती है, नई दुनिया की सारी प्लानिंग बैठती है। तो वैकुंठ का राजभाग सीढ़ी पर लेकर के आया था। बाप कहते हम तुम्हारे लिए सीढ़ी पर बैठ लेकर के आ गया हूँ, मैं आकर के स्वर्ग स्थापन करता हूँ। ऐसे नहीं आता हूँ ज्ञान सुना के चला जाता हूँ फिर तुम स्वर्ग स्थापन करते रहते हो, नहीं, मैं खुद आकर के स्वर्ग स्थापन करता हूँ। फिर तुम स्वर्ग में कैसे चलेंगे? तुम्हारी आत्मा तो अभी तमो प्रधान है, तमो प्रधान आत्मा तो जा ही नहीं सकती। परम धाम से तो तुम क्यों आत्मा आएगी? अभी फिर पति बन गए हो, पावन बनने के लिए मनुष्य भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हैं, समझते नहीं कि पावन कैसे बनना होता है। और तो समझते हैं भगवान से मिलने के लिए तो अनेक रास्ते हैं। सन्यासी कह देते हैं ये रास्ते भगवान से मिलने के। अरे फिर भी भक्ति कितना समय करनी होगी, भगवान ये अपने घर का रास्ता बता देंगे ना, ये कोई पहाड़ी थोड़ी है जो कहां से भी चढ़ जाए तो पहाड़ी पर कौन जाएगा। कहते भी भक्ति का फल लेने भगवान को आना होता है, न जाने किस रूप में भगवान आ जाए। जरूर भगवान आएंगे तो राज्य भी सिखा देंगे ना, कोई में प्रवेश करेंगे ना, उसके दिल में भी सुनो नहीं प्रवेश कर जा देंगे। क्यों उत्तर बिल्लों को ज्ञान सुनाना है क्या? मनुष्य समझते हैं और मनुष्यों में भी जानवर मिसल भी होते हैं, समझदार भी होते हैं, मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य संतान भी होते हैं, तो मैं किसमें प्रवेश करूंगा? जानवर बुद्धि कुत्ते बिल्ले कैसे मनुष्य में प्रवेश करूंगा? नहीं, ज्ञान तो मनुष्यों को ही पहले मिलता है। पहले कौन समझेंगे? जो मनन चिंतनशील मनु की औलाद होंगे, ब्रह्मा की औलाद होंगे, मुखवंशावली होंगे, वही तो पहले समझेंगे। जानवरों को तो ज्ञान नहीं मिल सकता, जानवर तो आगे के आधार पर काम काम करता है, बुद्धि तो चलाता नहीं। जाते भी ठीक है परंतु समझ नहीं सकते हैं। इस समय सारी दुनिया के बच्चे बेसमझ, बाप को न जानने के कारण निर्धन के बन पड़े। धनी बिगड़े कितनी छिटछिट अशांति हो गई है, पति में कोई छिटछिट नहीं होती है जिसमें शांति सभी मांगते हैं, लेकिन ये तो शांति धाम नहीं है ना। बाप ने समझाया आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, इस शरीर द्वारा आत्मा पार्ट बजाती है। शांति धाम वो है निराकारी दुनिया, वहां आत्मा शांत रहती है। कहां? जहां दुनिया ही निराकारी है, निराकारी माने जहां सब योगी हैं, सब निराकारी स्टेज में रहने वाले हैं, वहां आत्मा शांत रहती है। इस शरीर द्वारा आत्मा पार्ट बजाती है। विश्व में शांति तो जरूर यहाँ मनुष्यों को चाहिए, यहाँ चाहिए या वहां मिलेगी? चाहिए यहाँ, और शांत होंगी आत्माएं कहाँ? शांति धाम में आत्माएं बिंदु बन के रहती है निसंकल्पी स्टेज में सदैव, और शांति यहाँ चाहिए तो कैसे हो जाएगी? जरूर आत्मा की ऐसी स्टेज बनेगी ना, संगठित रूप में जहां भी आत्माओं की ऐसी स्टेज बनेगी वही शांति धाम। इसलिए वाणी में बोला हुआ भी है कि तुम बच्चे परम धाम को इस धरती पर उतार लेंगे। ये भी बच्चों को समझाया है सत्युग में दुख का नाम निशान नहीं होता है, उनको कहा जाता है सुखधाम। अक्सर करके कृष्ण के मंदिर को सुखधाम कहते हैं। मंदिर माने? मंदिर माने यादगार। जो भी देवताओं के मंदिर होंगे उन मंदिरों में देवताओं की जो जैसा देवता होगा वैसी उसकी कोई विशेष यादगार जरूर होगी। तो यादगारें कब की होती है? यादगारें जो भी हैं वो सत्युग देवता की हिस्सी नहीं है, संगम की बातें। तो अक्सर करके कृष्ण के मंदिर को सुखधाम कहते हैं। कौन सा कृष्ण हुआ? जरूर संगम जी सर की तरफ इशारा किया। अभी तुम समझते हो कृष्ण का मंदिर तो सारी विश्व बन जाती है, सारी विश्व। विश्व किसे कहा जाता है? जगत किसे कहा जाता है? जगत कहो विश्व कहो तो 500 करोड़ की दुनिया को कहा जाता है। सत्युग के मालिक और विश्व के मालिक में तो फर्क हो गया ना। तो सारी विश्व श्री कृष्ण का मंदिर बन जाती है। विनाश होने से पहले, टोटल विनाश होने से पहले किसियंस भी लॉर्ड कृष्ण को पहचानेंगे। उस कृष्ण के मंदिर को कहा जाता है शिवालय, जिसमें देवताएं भी रहते हैं। पहले होता है शिवालय, फिर वैशाल्य बन जाता है। शिवालय शिव बाबा स्थापन करते हैं और बाकी सब वैशाल्य बनाते हैं। वैशाल्य रावण बनाती है। रावण आदमी है कि औरत है? वैशाल्य रावण बनाती है, आदमी है कि औरत है? औरत है। माया रावण कहा जाता है। रावण रूप कौन सा धारण करता है? मायावी रूप धारण करता है। तो जो रूप धारण करता है जैसा रूप होगा देखने में आएगा वैसा ही तो कहा जाएगा। को वैशाल्य रावण बनाती है। ती है क्यों कहा? लंपटाले नहीं कहा, क्या कहा? वैशाल्य, क्योंकि वैश्याओं के साथ तो लंपट भी होते हैं, लेकिन लंपटों का अस्तित्व नहीं होता है वैशालों, किसका अस्तित्व होता है? वहाँ ज्यादा है महत्व किसका होता है? वैशाल्य में वैश्य का महत्व होगा या लंपट का महत्व होगा? वैश्य का महत्व ज्यादा होता है, तो वैश्य ही वैशाल्य कहलाती है। लंपट तो ऐसे हो गए जैसे पिछले लग्गू, तो रावण को यहाँ क्या बोला? वैशाल्य रावण बनाती है, माना मायावी रूप धारण करने वाला जो है वो ही माया। वास्तव में मैं ही शिवालय बनाता हूँ, है तो एक ही दुनिया, उनको आधा आधा करती है, हेल और हेवन, ये नाम तो मशहूर है, तो उनको जानना चाहिए ना कि हेल किसे कहा जाता है। हेल माना, हेल किसे कहा जाता है? नरक। हेल कहा जाता है भाड़ को, जिसमें आग जलती है, इसका नाम हेल क्यों रखा गया? इसमें काम आदमी जलती है सारी दुनिया में, उस काम आदमी में सब जल मरते, तो इसलिए अंग्रेजी में नाम दिया हेल। तो उनको जानना चाहिए, हेल को भी जानना चाहिए, हेवन को भी जानना चाहिए। अभी की दुनिया है ही नरक, मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब जरूर पहले नरक में था ना, स्वर्ग में था। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था, तब तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, नहीं तो कहें क्यों? और स्वर्गवासी हुआ कैसे? ये दुनिया नरक है या स्वर्ग है? दुनिया ही सारी नरक है, तो स्वर्गवासी कैसे हुआ? जरूर मनसा को चेंज करने की बात है। दुनिया तो नरक ही है, पतित ही है, पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं होता, और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होता, तो जब दुनिया ही नरक है तो उसमें पावन कोई कहां से आ जाएगा? तो क्या करना पड़े? जरूर मनसा को चेंज करना पड़े। मनसा के वाइब्रेशन, वायुमंडल जब चेंज होता है तो वो आत्मा खुद अपने आप को सुख में अनुभव करती है, पावन स्टेज में अनुभव करती है, समझती है कि मेरे संकल्पों में परिष्कार हुआ है, संकल्पों की शुद्धि हुई है। तो आत्म हुए, मर गई दुनिया नरक। तो पहले आत्मा का परिवर्तन होता है। आत्मा जब जीते जी मरती है, माना एक बाप का बनती है, बाप के ही डायरेक्शन पर चलती है, अपने अस्तित्व को और अपने देह के संबंधियों के अस्तित्व को नकार देती है, तब सुख का अनुभव करती है। तो कहावत है कि मरा तो स्वर्ग पधारा, स्वर्गवासी हुआ। अब वो स्कूल मरने की बात तो नहीं हुई, वो तो शरीर से मरते हैं, है वास्तव में यहाँ की बात। यहाँ जो जीते जी मरते हैं, एक बाप के बनते हैं, वो सुखमय स्टेज में अपने को अनुभव करते हैं, दूसरी आत्माएं भी जो उनके संसर्ग संपर्क में आती हैं, वो भी सुख का अनुभव करती है। तो स्वर्ग में होंगे तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में ही होगा। अब सारी दुनिया तो स्वर्ग नहीं बन सकती, लेकिन क्या हो सकता है? हाँ हम आगे तो कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल भी पक्का भी कुछ भी पूछे, तो क्या मानते हैं मनुष्य तो बनी चाहिए, कभी तो जन्म होती है तो बड़ा की शक्ति का भाव कहा जाता है, ये कभी किसी बात नहीं से विदेश किसी को मिलाए नहीं, ये बन रहा है ना, हर किसी को बन जाता है फिर उनको समझाया जाता है, कभी की बंदी आते हैं परंतु नहीं कोई बाबा का नाम गुम कर दिया, कितनी बात की दो साक्षात्कार से चित्र बनाया गया है प्रवृत्ति का, उसकी कितनी बात हो रही है, उसने प्रवृत्ति को गलत उठाया है परंतु उसने दो बाबा का नाम गुम कर दिया, ब्रह्मा जी की शंकर तीन चित्र बताते हैं, वो कर रहे का गोला बिठाया हुआ है, उसने बताया था क्या करना चाहिए, बात त्रिवृत्ति की हो रही है ना, उस गोले तो लाल लाइट के गोले की बात थोड़ी हो रही है, वो कोई मूर्ति थोड़ी है। तो जो तीन मूर्तियों का चित्र बनाया है उसमें तीनों ही मूर्तियों में ब्रह्मा का चित्र रख दिया। विष्णु का चित्र है या शंकर का चित्र, उसको ध्यान से देखा गया। 30x40 इंच के चित्र साक्षात्कार से तैयार कराए थे तो साबित होगा देखने से कि तीनों ही चेहरे, तीनों ही फीचर इसके बना दिए, ब्रह्मा के बना दिए। तो असली जो बाबा का स्वरूप है, नाम रूप है, वो गुम कर दिया। जैसे गीता ने कितना नाम गुम कर दिया, बाप का नाम गुम कर दिया और बच्चे का नाम प्रत्यक्ष कर दिया। तो ब्रह्मा बच्चा है या बाप है? ब्रह्मा जी तो बच्चा है, ब्रह्मा को भगवान के रूप में प्रत्यक्ष कर दिया। ये है गीता का भगवान, वो भी कथा का जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी, वो यही समझते हैं कि ब्रह्मा ही भगवान का रूप है। वास्तव में ब्रह्मा भी बच्चा है, ब्रह्मा को भी ज्ञान देने वाला, ज्ञान का बीज बोने वाला कोई और था यदि आज भी जो था वही फिर अंत में प्रत्यक्ष होता है और कृष्ण बच्चे को भी वर्षा देता है। कृष्ण बच्चे को भी पता चलता है कि हमारा ये पायक है और इस युग में पायक है। सूत्रभूषी बल दिखाते हैं परंतु इनमें शिव बाबा का नाम गुम कर दिया। नाम गुम हुआ तो रूप भी गुम हुआ, लगाई दिया दादा देवराज ब्रह्मा का नाम रूप लगाई दिया। माने जैसे बच्चे भाग में त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं वैसे क्या था तो ब्रह्मा ने भी नाम रूप किसका लगाई दिया, कृष्ण का। मानो कृष्ण बनाम ब्रह्मा का नाम रूप लगाई दिया। जाते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, साई की स्थापना आखिरी स्थापना कौन सी? ब्राह्मण की दुनिया का इतना गायन नहीं है, शास्त्रों में भी ब्राह्मणों का इतना गायन नहीं है। नई दुनिया का गायन है दादा, सप्पन स्टेज का गायन होता है। तो गाते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? नई दुनिया। तो जिस ब्रह्मा का चित्र रख दिया है त्रिमूर्ति में, उसके द्वारा नई दुनिया की स्थापना हुई। ईटों का गोदाम और ईटों का शांति धाम बना दिया गया तो वो नई दुनिया हो गई। ऐसे तो बक्सी नागवालों ने भी गरीबी केस में कन्यासी ने जो महल बनाया उसका नाम रख दिया स्वर्गाश्रम। तो स्वर्गाश्रम नाम नाम रखने का काम हो जाता क्या? तो जो गायन है शास्त्रों ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो किसकी स्थापना? नई दुनिया की स्थापना। नई दुनिया नई युग नहीं होती है, नई दिल्ली वास्तव में यहाँ तो नहीं है। दिल्ली को नई कहेंगे या पुरानी कहेंगे? नाम रख दिया नई दिल्ली है तो वास्तव में पुरानी है, वो तो नई दुनिया नहीं होती है। उनको कहा जाता है परिस्थान, स्थान ज्ञान पन्न परिस्थान, जो ज्ञान योग की पंखों से उड़ती है। इंद्र की सभा में कन्या दिखाती है ना, ऐसे नहीं कोई एक जगह बैठ जाती है तो उड़ने वाली होती। कन्या कहो परिचय कहो बात होती है, परिचय का तो कोई रिश्ता नहीं होता है पक्षी दुनिया वालों से, तो एक जगह पकड़ करके बैठ क्यों जाएंगे? तो जो दिखाते हैं इंद्र की सभा में कन्या, वो है तो मनुष्य ना, वास्तव में इंद्र सभा इनको कहा जाता है। इंद्र की सभा जहाँ ज्ञान बताते हैं उसको इंद्र सभा कहा जाता है। उसके ज्ञान बरसात से तुम ज्ञान कन्या बन रहे हो। ये बाबा है ज्ञान का सागर, वो बैठ करके इंद्रपक्ष की स्थापना करते हैं। नहीं आते हैं और ज्ञान सुना के चले जाते हैं तो इंद्रपक्ष की अपना स्थापना अपने आप होती रहती है। दिल्ली का पुराना नाम क्या है? इंद्रपक्षी नाम है। प्रत्यक्ष रूप से स्थापन किया गया किसके द्वारा? इंद्र के द्वारा। इंद्रमन इंद्रमन ब्रह्म, इंद्रियों पर जो कंट्रोल करे उसका नाम इंद्र है ना, राजा इंद्रियों का राजा। तो वो बैठ है इंद्रपक्षी की स्थापना करते हैं, कराते किसके द्वारा? कराते हैं ब्रह्मा द्वारा। गायन है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? नई दुनिया। ये सभी बातें बाप ही कैसे बच्चों को समझाते हैं। बच्चे बाप को कितने नहीं समझते, लेकिन बच्चे आधा कल से तुमने कुछ भोगा है, बच्चे मार में तुमने बहुत अच्छे खाए हैं, तुम रोगी में पड़े हो, यहाँ तुम्हारी आई भी कम रही थी, कटिंग है तो तुम अमर बनते वहां कब काल खाता है, कान पर तुम बिगत आ जाते हो, कान किसको खाता है, तुम्हें को खाता है, आत्मा को खाता है, कहीं वो खाता है तो सती के कितने भी जन्म होंगे उनके कान खाएगा ही नहीं, वो इस समय की होगी, लेकिन कान को खाएगा ना, शरीर कान के गाड़ी में जाएगा या नहीं जाएगा कोई मरीज होगा, लेकिन शरीर को कान खाएगा कि नहीं खाएगा, हाँ संगम की बात है, संगम भी जिस पर स्थापन होता है उसमें जो आत्मा है अपनी हमारे स्टेज पर स्थित हो जाती है, नित्य बुद्धि स्टेज पर टिक जाती है, उनके शरीर को कान खा नहीं सकता, बर्फ में बढ़ जाएगा लेकिन कान उसको खलास खलास नहीं कर सकता, तो वहां सब कान खाता है, कान पर तुम भी जताती क्या समय पर आते ही शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते वहां मृत्यु का डर भी नहीं होता है, दुख की वहां कोई बात नहीं होती, तो ऐसे सुखधाम में चलने के लिए पवित्र जरूर बने, कैसे सुखधाम में चलने के लिए है, सुखधाम तो कृष्ण के मंदिर को सुखधाम कहा जाता है, बाकी ऐसे नहीं कि कृष्ण नारायण भर नारायण घोष नारायण उनका जो राज्य है वो सुखधाम है, उन नारायणों के नाम बचपन में कोई कृष्ण नहीं होगा, जिस मंदिर का दायन है सुखधाम का वो कौन सा मंदिर है, कौन सी योग्यता है, जरूर संगम जी चरण योग की बात है, ऐसे सुखधाम में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना पड़ेगा, बच्चे सेकंड बस में जाके जन्म लेंगे, थर्ड बस में जन्म लेंगे, तो चौथाई तला आधा तला कम पवित्र बनेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ऐसा सुखधाम जहां कान नहीं खा सकता वहां पहुंचने के लिए 100% पवित्र जरूर बनना पड़ेगा, इस समय सभी अपवित्र भिन्न भिन्न भाषा में सभी को कहते हैं कि हे भगवान आकर के विपरीत करो, कैसे विपरीत करो, कैसे विपरीत करो, दुखों से विपरीत, दुख काय से आता है, इनकी अर्थी से दुख आता है, यहाँ प्यारिटी है वहां पवित्रता से शांति है, बुद्धि पवित्र होगी तो सुख संपत्ति से बड़ी पूरी रहेंगे, बुद्धि अपवित्र है तो दुखी और परेशान होते रहेंगे, तो सुख आते हैं भगवान आकर के लिबरेट करो, कैसे लिबरेट करो, इनकी अंति से लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो, हमारे ऊपर रहम करो, हमको ले चलो, हम नहीं जानते कि हम कहां से आए हैं, फिर कहां जाना है, इसलिए बाप ही कहते हैं ये है सभी अंधे की औलाद अंधे, अभी बाप बच्चों को रास्ता बताते हैं फिर साथ भी ले जा रहे क्या, अगर नहीं रास्ता बता के चले जा रहे हो फिर तुम अपने आप आते रहोगे याद करते करते, नहीं अभी बाप तुम बच्चों को रास्ता बताते हैं फिर बाद में साथ भी ले जाएंगे, साथ ले जाएंगे कौन, रास्ता बताने वाला बाप वो साथ में ले जाएगा या बिल्ली बाप साथ में ले जाएगा, रास्ता बताता है जरूर शरीर के द्वारा रास्ता बताता भी है और उसी स्वरूप से ले भी जाता है, कहां ले जाता है उसे स्टेज में, कहां ले जाएंगे कहीं शांति भांति स्टेज में, निसंकल्प स्टेज में ले जाएंगे, हिंदी है पांडव संप्रदाय, उसके बच्चे हो पंडे के बच्चे हो, तुम औरों को भी ले जा सकते हो, पांडव के बच्चे वो पांडव तुम संप्रदाय हो तो बच्चे कितने हुए पंडित जी, बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो और उनको भी निश्चय कराओ सुखधाम और शांति धाम का रास्ता और उनको भी बताओ, इस समय तो रावण ने सभी को अंधा बना दिया, कल्प की आय ही लाखों वर्ष कर दी है, कैसा अंधा बनाया सभी को, माना सभी को, माना किसको किसको, 500 करोड़ को अंधा बताया या कोई बच गया, कोई बच गया सभी को अंधा बना दिया है, कल्प की आयु ही लाख वर्ष कह देते, अंधे कैसे बन गए? जब बुद्धि में ये बैठ गया कि अभी तो बिना दिमाग कुछ नहीं होना है, अभी तो बहुत लंबा टाइम पड़ा है, तो किसने अंधा बनाया? अंधा किसने बनाया? रावण संप्रदाय। रावण ने सभी को अंधा बनाया, ऐसा तरह समाली बनाता हूँ, कैसे तरह समाली? कोई फूल महल मानिया बनाने की बात नहीं है, कैसे तरह समाली बनाता हूँ? जो नई दुनिया बनेगी वहाँ महल मारियों की बात नहीं रहेगी, कौन सी महल मारी होंगी? ऐसा संगठन होगा जहाँ हमारी सबकी स्टेज संगठित रूप में बनी पड़ी होगी। रावण ने सबको अंधा बना दिया। रावण का काम क्या है, कैसे बना दिया? कौन है रावण? गुरु लोग। कौन से गुरु लोग? बाहर की दुनिया के ब्राह्मण की दुनिया नहीं है, ऐसे गुरु लोग हैं जो ऐसी ऐसी एक्ट करते हैं कि लोगों को अविश्वास हो जाता है। किस बात पर? जो दुनिया सामने खड़ा है, क्या एक्ट करते हैं? मेहलवानी आटारियां बनाते जाते हैं। लोग जब देखते हैं कि मेहलवानी आटारियां बनती चली जा रही है कंकरीट की, तो उनको फिर खास विश्वास उभर जाता है, यार ये दुनिया आ रही है, ये तो करते थे योगी, तो करने को देखेंगे या कहने को देखेंगे? तो करने को पहले देखेंगे। दुनिया करनी देखना चाहती है आजकल दुनिया में, सुनना नहीं चाहते, सुनते सुनते कर गए। तो बाप कहते हैं अभी जैसे मैं तुमको ऐसा बड़ा सामाजिक बनाता हूँ, सभी को रावण ग्राह से लिबरेट आकर के करता हूँ, अगर नहीं ज्ञान सुना के चला जाता हूँ फिर तुम अपने आप लिबरेट होते रहते हो। नहीं, मैं आकर के खुद लिबरेट करता हूँ। शास्त्रों में तो बत्ती मार की क्या क्या बातें लिखी, अभी तुम सच्ची सच्ची द्वारिका का मालिक बन रहे हो क्या? कैसी द्वारिका का मालिक बन रहे हो? सच्ची सच्ची दो द्वारिका, दो द्वारिका द्वैत क्यों होना चाहिए? दो द्वारिका नाम क्यों नाम दे दिया? राजाओं के देश तो अलग ही होते हैं, भाषा तो सचिव देवता में वही होगी, दोनों को देवी देवता कहा जाता है। दोनों को माने किन को? दोनों को त्रेता युग में जो क्षत्रिय होते हैं और सचिव में जो देवताएं होते हैं, दोनों को देवी देवता कहा जाता है। वो हुए चंद्रवंशी, किसके वंशी? चंद्रमा को विशेष महत्व देने वाले, समझते हैं कि हमको चंद्रमा से ही रोशनी मिली। बुद्धि में कौन समय हुआ होता है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्म, उसके प्रति ही विशेष महत्व रहता है। यही बुद्धि में बैठा गीता का भगवान, गीता का भगवान कोई और है। तो द्वारिका जो नाम पड़ा वो फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? द्वारिका जो यादगार है कि समुद्र में सोनी द्वारिका थी, वो कहाँ की बात हुई? सोना मानो, सोना मानो क्या? सोना मानो सच्चाई, सच्ची बात जहाँ सुनाई जाए वही सच्चाई, वही सोना है, सच्चे को ही सोना कहा जाता है। तो वो दो प्रकार की है, चंद्रवंशियों के राज्य की भी स्थापना भी हो रही है और सूर्यवंशियों के भी राज्य की स्थापना भी हो रही है, दोनों राज्य भी स्थापन होते हैं, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी, दोनों को देवी देवता कहा जाता है। तो जिस पीरियड में ये दोनों राज्य का फाउंडेशन पड़ता है, चंद्रवंशी सूर्यवंशी का, उसका नाम रख दिया है कौन सी वारिका? दो वारिका। पंचो कला का फर्क हो जाता है, लेकिन स्वर्ग को कहा जाता है ना। इस समय तुम हो कि तुम तीर्थ संप्रदाय, क्या जानते हो हम शिव बाबा की संतान है? हम मूल वतन में रहने वाले हैं, पंचो वतन में, मूल मन, मूल वतन मानो परम धाम, परे से परे स्टेज, कौन सी परे स्टेज है? सबसे ऊंची स्टेज कौन सी होती है? निस्संकल्प स्टेज। तुम ऐसी स्टेज वाले हो, जब चाहो तो दूसरी की स्टेज में टिक जाओ, उनको तो टाइम लगेगा टिकने, पत्रकार बजाएंगे, माहौल बनाएंगे, संगठन बनाएंगे, तब कहीं उसी स्टेज में टिकेंगे। और तुम तो एक कटेंगे, हम है ही मूल वतन के रहने वाले, फिर यहाँ शरीर में आए हैं पार्क बजाने के लिए,
अभी हम ब्रह्मा की औलाद हैं, एडॉप्ट किए हुए हैं, प्रजापिता है तो जरूर एडॉप्ट करेंगे। प्रजा के लिए ब्रह्मा जी नहीं, हमें सिर्फ अम्मा पुत्र नहीं है, ठीक है, प्रजापिता है तो जरूर एडॉप्ट करेंगे। बाप बच्चों को एडॉप्ट करता है किसके द्वारा, माँ ब्रह्मा के द्वारा, माँ के द्वारा। ब्रह्मा कौन है ये भी कोई जानते नहीं है, कोई नहीं समझते हैं। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है, यादगार मंदिर कहाँ पर है, अजमेर में, अजमेर में मंदिर है, वहीं क्यों मंदिर, अजमेर में मंदिर क्यों है, यादगार मंदिर ब्रह्मा का अजमेर में क्यों बनाया गया, अजमेर माना क्या, आज माना क्या और मेरा माना क्या, आज माना बकरा और मेरा माना भेड़, भेड़ बकरी जा रहे थे माना। जिनमें अपनी अकल, अपनी अकल नहीं होती है सोचने विचार में, एक गड्ढे में गई तो पीछे पीछे सारे गड्ढे में चले जाते, उनको कहते हैं अजमेर ब्रह्मा का स्थान, वहां ब्रह्मा की यादगार बनी हुई है सबसे बड़ी। कैसे ब्राह्मण धक्का लगे और चल पड़े, धक्का लगता है और चल पड़ते हैं माना। अपनी स्वेच्छा से ब्राह्मण नहीं बनते, अपनी स्वेच्छा से सरेंडर नहीं होते, उनको उनको खुद करके सरेंडर कराया जाता है। तो अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है यादगार, वहां भी ब्रह्मा को दारी मूंछ वाला दिखाते हैं, दाढ़ी मूछ माना क्या, उसका अर्थ क्या, दाढ़ी मूछ किसको होती है, मनुष्यों को होती है, कली के मनुष्यों को या देवताओं को, देवताओं को तो दाढ़ी मूछ होती नहीं, उनको रोज सेव करनी पड़ती है, उनको सेविंग की दरकारी नहीं, सफाई की, हाँ तो ऑटोमेटिक सफाई रहती है, है? हाँ तो दाढ़ी किसकी कटी गई, विकारों की कटी गई। जैन लोग साधु बनते हैं या साधु बनती हैं तो वो एक एक बार नोच नोच करके निकालते हैं, ये दिखाने के लिए हमें तो विकार छोड़ दिए, विकारों को त्याग दिए, अब दाढ़ी के बाहर उठाने में थोड़े विकार खत्म हो जाए, ये तो शरीर के अंदर की बात छोड़े, ये तो आत्मा के अंदर भरे पड़े, तो कोई स्थूल शरीर की बात नहीं है, स्थूल दाढ़ी मूछ की बात नहीं है, ऐसे नहीं कि स्थूल दाढ़ी मूछ है तो ही विकारी है, दाढ़ी मूछ नहीं भी है, स्थूल चोला भी है, अगर विकार हो सकते हैं ना, अगर विकारी बुद्धि है तो इसका मतलब ये हुआ कि विकारी बुद्धि है तो विकृति रहेगी, माना विकार में जरूर बनेगा। अजमेर में ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं, वो सूक्ष्म मतन राशि कौन सा और दाढ़ी मूछ वाला कौन सा, ब्रह्मा दो है, कौन से दो ब्रह्मा, एक ब्रह्मा सूक्ष्म मतन राशि और एक एक ब्रह्मा साकार वतन राशि दाढ़ी मूछ वाला। तो प्रश्न किया कि वहां अजमेर में भी ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं, फिर सूक्ष्म मतन में क्यों दिखाया है, अलग से दिखाने की जाए क्या दरकार, ये कहां की यादगार, सूक्ष्म मतन में तो दाढ़ी मूछ होती ही नहीं क्या, मनन चिंतन मंथन की जब स्टेज होती है तो विकारों की बात उस समय नहीं होती, बत्ती मार में तो मनुष्यों को जो आता है वो बनाते रहते हैं, कितने ढेर के ढेर चित्र आदि बनाए, तुम समझते हो राइट चित्र है ये तो शिव बाबा का, शिव बाबा का चित्र है राइट है, शिव बाबा का चित्र राइट है, कौन सा चित्र है शिव बाबा का राइट, बत्तीस वाला ब्रह्मा और विष्णु का भी पार्ट यह है। कहाँ ब्रह्मा का भी पार्ट यहाँ साकार शक्ति पर है, तो विष्णु का भी साकार शक्ति पर पार्ट होता है। विष्णु के जो दुख है मतलब ये रेखा भी कहाँ से आ गई, उनको प्राप्ति निशान मिली, उनके दुख गुणों की अलंकार की निशान दिखाई गई। बाकी है तो साकार शक्ति का है, संतों को तो देश आदि होती नहीं है, ये सभी साक्षात्कार मात्र है, तो इसमें किसी भी मुझे की दरकार नहीं है। ब्रह्मा भी यहाँ सोचे रखी लक्ष्मी नारायण, नारायण भी यहीं बनेंगे। ये भी समझा है जब अव्यक्त बनते हैं तब फरिश्ता कहा जाता है, बाकी वहां विष्णु हो कैसे सकता है, कहाँ कहाँ कैसे हो सकता है, कुछ समझ नहीं। ये बड़ा भी शिक्षा मतलब कहाँ से आ देंगे, वहाँ कोई कारण है क्या? बात कहते हैं बच्चों को दिन प्रतिदिन बहुत गहरा समझाता जाता है, फिर बाद में जब बच्ची मार्ग होता है तो उनके शास्त्र बनते हैं। तुम्हारा भी सभी इस समय के शास्त्र हैं जो गाए जाते हैं, इस समय तो बाप के साथ प्रतिज्ञा करते हो बाबा ये अंतिम जन्म हम पवित्र जरूर बनेंगे, हम अपन को भाई बहन समझेंगे, पवित्र बनकर हम आपके देहद का राज्य जरूर बनेंगे। तुम जानते हो कि बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको पढ़ाते हैं, ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाते कौन है, पढ़ाते शिव बाबा हैं, लेकिन किसके द्वारा पढ़ाते हैं, ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। तो ये भी कंफ्यूजन हो जाता है क्या है? पढ़ाने वाला कौन है, है? नहीं कंफ्यूजन हो जाता है कि पढ़ाने वाला तो ब्रह्मा है, ब्रह्मा नहीं तो झूले कट जाती है। तो सन्यासी ने क्या करना शुरू कर दिया है? सन्यासी जब सिमरन करने बैठते हैं तो क्या करते हैं, गऊ मुख में हाथ डाल करके और स्मरण करने लग पड़ते हैं, राम राम राम, मुंह से राम राम कहेंगे, हाथ कहाँ पड़ा हुआ है, हाथ गऊ जी के मुख में पड़ा हुआ है, तो यादगार सारी कहाँ की है, सब मनी की यादगार है ये सब। वास्तव में ब्रह्मा देने वाला नहीं है, देने वाला कौन है, शिव बाबा, पढ़ाने वाला शिव बाबा है। हाँ ये पढ़ करके फिर पढ़ाए सकते हैं, फिर भी कोई पूछेगा किसी ने पढ़ावा तो क्या कहना पड़े, ये बातें किसी ने पढ़ाई तो फिर भी कहना पड़े कि शिव बाबा ने पढ़ाई। अगर शिव बाबा से कोई पूछे तुमको किसी ने पढ़ाया तो किसका नाम लेंगे, है?